आपको पता है, जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो अक्सर एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा।
हाँ बिल्कुल, एकदम इंजीनियरिंग की तरह, है ना?
हाँ, जैसे अगर हाथ में दर्द है और हड्डी टूटने का शक है, तो एक्सरे में वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन बहुत ही साफ दिख जाती है।
सही बात है।
डॉक्टर बस उस तस्वीर की तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए, ये रहा फ्रैक्चर, यही समस्या है। मतलब ये दो टूक होता है।
उसमें कोई असमंजस नहीं होता, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है।
बिल्कुल। और इंसान होने के नाते मुझे लगता है हमें ऐसी चीजें बहुत पसंद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें स्पष्ट रूप से किसी श्रेणी में रखा जा सके। ये स्पष्टता हमें एक तरह की तसल्ली देती है।
ये तो इंसानी फितरत है, मतलब हम हर चीज में एक ठोस और निर्विवाद सत्य खोजना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं, यानी आर्कियोलॉजी की दुनिया में,
बिल्कुल।
तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है।
वो सफेद लाइन गायब हो जाती है।
एकदम सही कहा। हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो सच कहा जाए तो बहुत ही धुंधला और अस्पष्ट है। यहां कोई सफेद लाइन नहीं होती जो सीधे सीधे बता दे कि हजारों साल पहले असल में क्या हुआ था।
तो फिर होता क्या है हमारे पास?
हमारे पास बस जमीन से निकले कुछ मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के कुछ टुकड़े और आधी अधूरी इमारतें होती हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी व्याख्या हमें खुद करनी होती है।
क्या बात है, ये निर्णायक अस्पष्टता की एकदम सटीक परिभाषा है। और आज हमारे इस गहन अध्ययन का विषय भी यही है। आज हम डॉक्टर रॉबर्ट वैनॉय के ओल्ड टेस्टामेंट इतिहास के लेक्चर 19 के विस्तृत नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं।
हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प लेक्चर है, वाकई।
इसमें पेट्रियाकल काल, मतलब पितृसत्तात्मक काल, और उस समय के इतिहास को समझने में पुरातत्व विज्ञान की भूमिका का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है।
और इन दस्तावेजों में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि पुरातत्व विज्ञान कोई जादुई छड़ी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जमीन से निकलते ही रातों रात किसी ऐतिहासिक सत्य को साबित कर दे, बल्कि ये बिखरे हुए टुकड़ों और इंसान की अपनी व्यक्तिपरक व्याख्याओं का एक बहुत ही जटिल जाल है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है।
यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है समझना कि विज्ञान और इतिहास के संगम में हमारा ज्ञान कैसे हमेशा बदलता रहता है।
मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि एक बार जमीन से कोई चीज निकल आई तो बस इतिहास हमेशा के लिए तय हो गया,
पत्थर की लकीर बन गया।
हाँ, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। डॉक्टर विनोय का लेक्चर में एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है। ये दिखाता है कि पुरातात्विक व्याख्याएं कितनी अस्थायी हो सकती हैं। क्या आपको एशियन गेबर की खुदाई वाली कहानी याद है?
अरे बाप रे, हाँ, ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। मतलब नेल्सन ग्लुएक नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, है ना?
हाँ, नेल्सन ग्लुएक।
वो राजा सोलोमन के बंदरगाह की तलाश कर रहे थे।
हाँ।
क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में जिक्र है कि राजा सोलोमन के पास लाल सागर के किनारे एशियन गेबर में जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा था।
सही है।
तो ग्लुएक उसी इलाके में खुदाई कर रहे थे।
हाँ।
अब उन्हें वहां बंदरगाह तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें और भी ज्यादा रोमांचित कर दिया।
और वो क्या था?
उन्हें वहां तांबा पिघलाने के सबूत मिले और एक ऐसी इमारत मिली जिसकी दीवारों में दो कतारों में बहुत सारे छेद बने हुए थे।
और यहीं से ग्लुएट की कल्पना ने असली उड़ान भरी।
हाँ बिल्कुल।
मतलब उन्होंने उस इमारत की भौगोलिक स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। वो इमारत अराबा घाटी के उत्तर से आने वाली तेज हवाओं के ठीक रास्ते में स्थित थी।
हवाओं के रास्ते में।
हाँ, तो उन छेदों को देखकर ग्लुएक ने ये निष्कर्ष निकाला कि वे हवा के प्रवाह के लिए बनाए गए थे, एक तरह का फ्लू सिस्टम।
अच्छा।
उन्होंने सोचा कि इन छेदों के जरिए तेज हवा प्राकृतिक रूप से अंदर आती होगी और भट्टी की आग को भड़काती होगी, एकदम वैसे ही जैसे लोहार की धौंकनी काम करती है।
बाप रे, क्या इमेजिनेशन है।
बिल्कुल। उन्होंने सोचा इसका उद्देश्य तांबे के अयस्क को पिघलाना रहा होगा, और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बड़े गर्व के साथ दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि उन्होंने इतिहास की पहली ब्लास्ट फर्नेस यानी धमन भट्टी खोज निकाली है।
मतलब सीधे इतिहास की पहली ब्लास्ट फर्नेस।
हाँ, उन्होंने तो इस जगह को प्राचीन फिलिस्तीन का पिट्सबर्ग तक कह डाला।
पिट्सबर्ग, प्राचीन फिलिस्तीन का पिट्सबर्ग, ये तो बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा है।
ऐसा ही था, मानो वहां सोलोमन के समय में कोई बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र चल रहा हो।
और सबसे मजेदार बात, मजेदार और थोड़ी अजीब भी, कि इस निष्कर्ष को रातों रात मान भी लिया गया। उस समय की कई ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी की किताबों में ये बात बहुत प्रमुखता से छप गई कि राजा सोलोमन तांबे का बहुत बड़ा औद्योगिक स्तर का व्यापार करते थे।
बिल्कुल, ये एक स्थापित सत्य बन गया था।
लेकिन फिर इस ऐतिहासिक सत्य में एक बड़ा मोड़ आता है। सालों बाद 1965 में ग्लुएक ने खुद अपने ही इस स्थापित सिद्धांत को खारिज कर दिया।
हाँ, उन्होंने खुद माना कि वे गलत थे।
उन्होंने माना कि वे छेद किसी प्राकृतिक ब्लास्ट फर्नेस के लिए नहीं थे, दरअसल वे छेद केवल लकड़ी के बीम रखने के लिए बनाए गए थे जो समय के साथ सड़ गए थे या शायद जल गए थे।
और इस वापसी ने, मतलब इस यू टर्न ने, पूरे पुरातात्विक समुदाय को चौंका दिया था। ग्लुएक ने यह भी स्पष्ट किया कि वहां तांबा पिघलाने का काम किसी बड़े औद्योगिक पैमाने पर नहीं होता था।
तो फिर कैसे होता था?
वो प्रक्रिया बहुत ही आदिम थी। छोटे छोटे क्रूसिबल्स यानी मिट्टी के प्यालों में लकड़ी के कोयले की आग पर धातु को पिघलाया जाता था।
कोई ब्लास्ट फर्नेस नहीं थी?
बिल्कुल नहीं। इसका ब्लास्ट फर्नेस जैसी किसी उन्नत तकनीक से कोई लेना देना नहीं था। ये घटना इस बात का बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि अपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर बड़े और रोमांचक निष्कर्ष निकालना कितना खतरनाक हो सकता है।
सही बात है।
आर्कियोलॉजिस्ट भी आखिर इंसान ही है। वे भी अक्सर मिट्टी में वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं।
ये तो ऐसा है जैसे भविष्य का कोई इंसान, मान लीजिए आज से हजारों साल बाद, हमारे घर के गैराज की खुदाई करे।
अच्छा, गैराज की?
हाँ, और वहाँ उसे लॉन मूअर, ड्रिल मशीन और कुछ अजीबोगरीब औजार मिले, और चूंकि उसे उन औजारों का असली इस्तेमाल नहीं पता, तो वो एक पूरी थ्योरी गढ़ ले कि ये कोई प्राचीन धार्मिक स्थल था।
बिल्कुल।
वो सोचेगा कि यहाँ किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए अजीबोगरीब अनुष्ठान किए जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने समय की समझ को हमारे समय के औजारों पर थोप रहा है।
ये बहुत ही शानदार तुलना है। इससे पूरी समस्या एकदम स्पष्ट हो जाती है। हम अक्सर अपनी वर्तमान समझ और अपनी उम्मीदों को अतीत के साक्ष्यों पर थोप देते हैं। और दिलचस्प बात देखिए, एजियन गैबर का ये विवाद केवल भट्टी के प्रकार तक ही सीमित नहीं रहा।
अच्छा, और भी कुछ हुआ था?
हाँ, 1972 में बेनो रोथनबर्ग नाम के एक विद्वान ने उसी इलाके में व्यापक स्तर पर खुदाई की, और उनके अध्ययन ने तो एक नया ही बम फोड़ दिया।
अरे वाकई, क्या मिला उन्हें?
रोथनबर्ग ने दावा किया कि वहाँ 14वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तांबे का कोई खनन हुआ ही नहीं था।
मतलब सोलोमन के समय में नहीं हुआ?
बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि राजा सोलोमन के समय में, जो कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, वहाँ तांबे का कोई व्यापार था ही नहीं।
बापरे, तो पूरी कहानी बदल गई। कार्बन डेटिंग अब ये कैसे काम करती है ये समझना भी जरूरी है। ये किसी भी जैविक सामग्री जैसे जली हुई लकड़ी या कोयले में मौजूद कार्बन 14 के क्षय को मापती है ना?
बिल्कुल सही। तो बिम्सन ने उसी इलाके से मिले नमूनों की डेटिंग का हवाला देते हुए कहा कि सोलोमन के समय में वहाँ खनन गतिविधियों की पूरी संभावना है।
क्या बात कर रहे हैं, मतलब पहले हाँ, फिर ना, और फिर से हाँ।
यही तो आर्कियोलॉजी है। एक ही जगह, एक ही जमीन, लेकिन हर दशक में उसका इतिहास बदल रहा है।
ये तो सिर चकरा देने वाला है।
और देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग के साथ भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। उसमें जो एरर मार्जिन होता है वो कई बार 100 या 200 साल का हो सकता है।
100-200 साल तो बहुत होते हैं।
प्राचीन इतिहास में 100 साल का अंतर पूरी कहानी बदल सकता है। ये पूरी बहस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि केवल भौतिक साक्ष्य पर निर्भर रहना कितना भ्रामक हो सकता है।
सही बात है। और जब जमीन से निकले सबूतों की व्याख्या इतनी बार बदल सकती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या प्राचीन लिखित ग्रंथ ज्यादा भरोसेमंद है?
एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
मतलब क्या मिट्टी के बजाय शब्दों पर विश्वास करना चाहिए?
ये हमें पुरातात्विक खुदाई और साहित्यिक आलोचना यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तुलना की ओर ले जाता है।
बिल्कुल।
और स्थानों की पहचान का जो मुद्दा है वो इस तुलना को बहुत अच्छी तरह से सामने लाता है।
जैसे कि वो ए वाला मामला, स्रोतों में ए नाम के एक स्थान का जिक्र है ना?
हाँ, ए।
जोशुआ की कहानी में इस जगह का बहुत महत्व है जहाँ एक बड़ा युद्ध हुआ था। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने उस जगह की खुदाई की जिसे ऐतिहासिक रूप से ए माना जाता था, तो वहाँ एक बहुत ही अजीब सच्चाई सामने आई।
क्या सच्चाई?
पता चला कि जोशुआ के समय में वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं। वो जगह सदियों से वीरान पड़ी थी।
ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है।
हाँ, अब मजे की बात यह है कि ए शब्द का प्राचीन हिब्रू में अर्थ ही खंडहर होता है।
अच्छा, खंडहर।
तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है कहानियों में ए और उसके पास स्थित बेथेल नाम के स्थानों का आपस में मिला दिया गया हो, क्योंकि बेथेल में उस समय बसावट थी।
स्थानों के इस भ्रम का एक और बहुत स्पष्ट उदाहरण है तेल हिशबोन।
तेल हिशबोन, इसके बारे में बताइए।
पुरातत्व के अनुसार वहाँ लेट ब्रॉन्ज एज मतलब उत्तर कांस्य युग में किसी नगर के होने या किसी विजय के कोई प्रमाण नहीं मिलते। और यहाँ साहित्यिक आलोचना एक अलग रास्ते से उसी निष्कर्ष पर पहुँचती है। जब साहित्यिक आलोचक प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं तो वे देखते हैं कि पाठ की भाषा कैसी है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है या कौन सी अवधारणाएं मौजूद हैं।
शब्दों की बनावट से वो अंदाजा लगाते हैं।
बिल्कुल। तो इन भाषाई सुरागों के आधार पर आलोचक ये मानते हैं कि नंबर्स अध्याय 21 से 30 का जो हिस्सा है वो मूल घटना के बहुत बाद के समय में जोड़ा गया था।
अरे वाकई?
हाँ। तो यहाँ देखिए, खुदाई और पाठ का विश्लेषण दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि उस विशिष्ट काल में वहाँ कुछ नहीं हुआ था।
ये सब सुनकर मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है, और डॉक्टर वेनॉय के लेक्चर में एक विद्वान का बहुत ही जबरदस्त कोट भी दिया गया है।
कौन सा कोट?
वो कहता है कि एक पहाड़ी पर 15 फुट के चौकोर हिस्से की खुदाई करना उतना ही व्यक्ति परक है, उतना ही सब्जेक्टिव है जितना कि किसी प्राचीन पाठ का साहित्यिक विश्लेषण करना।
ये बहुत गहरी बात है,
है ना? इसका कारण ये है कि हर कदम पर आपके व्यक्तिगत निर्णय शामिल होते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट ही तय करता है कि कहाँ खुदाई करनी है, कौन सी मिट्टी की परत महत्वपूर्ण है और किस टूटे हुए बर्तन को रिकॉर्ड में रखना है और किसे फेंक देना है।
बिल्कुल, ये चुनाव बहुत सब्जेक्टिव होता है।
तो अगर अलग अलग निदेशक एक ही जगह की खुदाई करें तो उनके निष्कर्ष अलग होंगे, क्योंकि इंसान अक्सर वही खोजता है जो वो खोजना चाहता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या पुरातत्व वास्तव में कोई ठोस विज्ञान है ही नहीं?
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो समझना होगा कि पुरातत्व न तो पूरी तरह से एक कठोर विज्ञान है जैसे कि भौतिकी।
हाँ, फिजिक्स की तरह नहीं है।
हाँ, और न ही ये महज कोई कल्पना है। ये स्तरीकी जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों और मानवीय पूर्वाग्रह का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है।
स्तरीकी मतलब स्ट्रेटिग्राफी।
हाँ, देखिए, जब आप खुदाई करते हैं तो आप उस जगह को हमेशा के लिए नष्ट कर रहे होते हैं। आप उस प्रयोग को दोबारा नहीं दोहरा सकते।
बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था,
है ना? इसलिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करने के बावजूद मानवीय निर्णय से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। आप किस चीज को सबूत मानते हैं और किस चीज को अप्रासंगिक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में पहले से कौन सी थ्योरी चल रही है।
ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। खैर, स्थानों और इमारतों की इस जटिलता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐतिहासिक व्यक्तियों की पहचान की ओर मुड़ते हैं।
व्यक्तियों की पहचान ही और भी दिलचस्प है।
बिल्कुल, खास तौर पे पैट्रियार्कल काल के अब्राहम, इजहाक और जैकब की ऐतिहासिकता। क्या वे सच में थे या वे केवल कहानियों के पात्र हैं?
यहाँ विचारधाराओं का एक बहुत बड़ा और तीखा टकराव देखने को मिलता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जूलियस वेलहाउजन जैसे विद्वानों का बहुत दबदबा था।
जूलियस वेलहाउजन, हाँ, उनका नाम तो बहुत आता है।
उनका एक सिद्धांत था जिसे डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस के रूप में भी जाना जाता है। उनका मानना था कि ये पैट्रियार्कल कहानियां महज किंवदंतियां हैं, मतलब बस कहानियां हैं।
बस कहानियां, कोई इतिहास नहीं।
वेलहाउजन ने इन्हें एक महिमावान मृग तृष्णा यानी ग्लोरिफाइड मिराज कहा था।
ग्लोरिफाइड मिराज, क्या शब्द इस्तेमाल किया है।
हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा था। उनका मानना था कि जब इसराइल के लोग बेबीलोन के निर्वासन में थे, जब उन्होंने अपनी जमीन और पहचान खो दी थी, तब उन्हें खुद को एकजुट रखने के लिए एक महान अतीत की जरूरत थी।
एक कॉमन पहचान बनाने के लिए।
बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अब्राहम और अन्य पूर्वजों की इन कहानियों को गढ़ा। वेलहाउजन के अनुसार ये कहानियां उस समय के समाज को दर्शाती हैं जब वे लिखी गईं, न कि उस समय को जिसका वे दावा करती हैं।
लेकिन हर सिद्धांत को चुनौती तो मिलती है, और यहाँ भी जॉन ब्राइट जैसे विद्वान सामने आए।
जॉन ब्राइट का नजरिया एकदम अलग था।
न कर सके, लेकिन वे वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। ये इतिहास का पेंडुलम था जो अविश्वास से वापस विश्वास की ओर जा रहा था।
और फिर 1970 के दशक में ये पेंडुलम फिर से दूसरी तरफ घूमा। टीएल थॉमसन और जे वैन सेटर्स ने इस बहस में एक नया भूचाल ला दिया।
टीएल थॉमसन, उनका विचार तो बहुत ही अलग था।
थॉमसन का नजरिया तो बहुत ही कट्टर था। उन्होंने अपनी किताब में सीधे तौर पर लिखा कि ऐतिहासिक अब्राहम की खोज पूरी तरह से व्यर्थ है।
व्यर्थ है, सीधे तौर पर।
हाँ, उनका मशहूर बयान था कि मुक्ति का इतिहास कभी घटित ही नहीं हुआ।
बाइबल किसी ऐतिहासिक अब्राहम का जिक्र ही नहीं करती।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है।
ये एक ऐसा बयान था जिसने पूरी अकादमिक दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था।
और इसी संदर्भ में ना डॉक्टर वैनॉय के लेक्चर में एक बहुत ही मजेदार घटना का जिक्र है। ये घटना मुझे बहुत पसंद है।
कौन सी घटना?
डॉक्टर वैनॉय बताते हैं कि एक शाम वो लाइब्रेरी में अपना काम कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो जर्मनी से पढ़ाई करके लौटा था।
अच्छा।
दोनों के बीच बहुत लंबी बातचीत हुई, विचारों का खूब आदान प्रदान हुआ। और आपको पता है उस व्यक्ति का नाम क्या था?
क्या था?
T.L. थॉम्सन।
अरे वाकई?
हाँ, उस समय डॉक्टर वैनॉय को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह वही थॉम्सन है जिसकी बेहद विवादास्पद किताब अभी अभी प्रकाशित हुई है।
क्या बात कर रही है?
थॉम्सन उस वक्त एक साधारण से ट्रेलर पार्क में रह रहे थे और उसी लाइब्रेरी में अपना रिसर्च कर रहे थे। एक महीने बाद जब डॉक्टर वैनॉय को उस किताब के बारे में पता चला, तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे, उस शाम मैं किस व्यक्ति से चर्चा कर रहा था।
ये वाकई बहुत मजेदार किस्सा है। ये याद दिलाता है कि बड़े बड़े अकादमिक विचार अक्सर बहुत ही सामान्य और मानवीय परिस्थितियों के बीच से जन्म लेते हैं।
बिल्कुल।
और देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस चर्चा में किसी भी धार्मिक या राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इस बात का निष्पक्ष विश्लेषण करना है कि विद्वानों के बीच ये बहस कैसे विकसित हुई और उनके तर्क क्या थे।
एकदम सही कहा आपने। तो सवाल ये है कि जब बड़े बड़े विद्वान आपस में इस बात पर लड़ रहे हो कि किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व था भी या नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा?
इसका जवाब जमीन के नीचे दबी उन हजारों प्राचीन पट्टिकाओं से मिलता है।
पट्टिकाएं मतलब वो क्ले टैबलेट्स?
हाँ, मिट्टी के क्ले टैबलेट्स। ये टैबलेट्स इस पूरी बहस की दिशा ही बदल देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी खोजें नहीं थी, हम मारी और नुजी ग्रंथों की बात कर रहे हैं।
मारी और नुजी ये कब के हैं?
ये 18वीं और 15वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। इन पट्टिकाओं ने उस काल की जीवन शैली, कानूनों और रोजमर्रा की रीति रिवाजों का ऐसा विवरण दिया जो वाकई हैरान करने वाला था।
हैरान करने वाला कैसे?
इन विवरणों की गहराई में जाने पर कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। जैसे मारी के ग्रंथों में भविष्यवाणी करने के अजीबोगरीब तरीकों का विस्तार से जिक्र है।
भविष्यवाणी के तरीके?
हाँ, वे जानवरों, खासकर भेड़ों के लिवर यानी जिगर का आकार देखकर भविष्य बताते थे।
जिगर देखकर?
हाँ, इसे हेपेटोस्कोपी कहा जाता है। पुरातत्वविदों को तो मिट्टी के बने हुए लिवर के मॉडल भी मिले हैं।
मिट्टी के लिवर? बाप रे।
और उन पर निर्देश लिखे थे कि लिवर के किस हिस्से का क्या मतलब होता है।
लिवर देखकर भविष्य बताना आज के समय में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय ये एक स्थापित और गंभीर प्रथा थी। और मुझे लगता है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात नुजी ग्रंथों में मिलती है।
बिल्कुल, नुजी ग्रंथ बहुत अहम है।
वहाँ विवाह, गोद लेने और विरासत के ऐसे विस्तृत कानून मिले हैं जो जेनेसिस की कहानियों में वर्णित रिवाजों से बिल्कुल मेल खाते हैं, एकदम हूबहू।
नुजी ग्रंथों के कानून इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। उदाहरण के लिए, नुजी कानून कहता था कि यदि किसी की पत्नी बांझ है तो उसे अपने पति को एक दासी देनी होगी ताकि वह बच्चे पैदा कर सके।
हाँ, ये तो जेनेसिस की कहानी जैसा ही है।
बिल्कुल, ये कानून एकदम वैसा ही है जैसा जेनेसिस में सारा ने हैगर के साथ किया था।
अरे हाँ।
और इसी तरह यदि बाद में पहली पत्नी से कोई जैविक पुत्र पैदा हो जाता है तो गोद लिए हुए वारिस को मुख्य विरासत से बेदखल कर दिया जाता था।
ये कहानियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के बीच एक बहुत ही सटीक समानता है।
बिल्कुल,
ये समानताएं वाकई अद्भुत हैं। और इसके बाद तो एक और भी बड़ी खोज हुई ना, एबला ग्रंथ।
हाँ, एबला पट्टिकाएं, ये तो बहुत बड़ी खोज थी।
1975 में सीरिया के पास एक खुदाई में 24वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग 17,000 पट्टिकाएं मिली। 17,000!
ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में आधुनिक दुनिया को पहले कोई जानकारी नहीं थी।
वाकई? और इन दस्तावेजों में सोडोम, गुमराह और यहाँ तक कि अब्राहम जैसे नाम भी शामिल हैं।
हाँ, ये नाम वहाँ मिलते हैं।
और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत सामग्री इस बात का भी निष्पक्ष रूप से जिक्र करती है कि कैसे आधुनिक राजनीति इतिहास को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण वहाँ की सरकार इन दस्तावेजों के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक करने से कतराती है।
क्योंकि वो यहूदी इतिहास के प्रारंभिक नामों से जुड़ते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल। खैर, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति से परे विद्वान जॉन ब्राइट का एक बहुत ही शानदार तर्क यहाँ सामने आता है जिसे हम एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं।
जॉन ब्राइट का वो तर्क वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बिंदु पर ध्यान दिलाया था।
वो क्या था?
उन्होंने कहा कि एबला और मारी ग्रंथों में जो नाम मिले हैं, जैसे एब्राम, जैकब, जेबुलियन, इश्माइल।
हाँ, ये नाम तो बहुत सुने हुए हैं।
ये दूसरी सहस्राब्दी के प्रारंभिक प्रकार यानी अर्ली टाइप के नाम हैं। उस काल में ये नाम बहुत आम थे।
अच्छा।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद के इजरायली काल में, यानी उस समय में जब वेलहोसन का दावा था कि ये कहानियां गढ़ी गईं, लोगों ने ये नाम रखना पूरी तरह से बंद कर दिया था।
मतलब नाम रखने का ट्रेंड ही बदल गया था।
बिल्कुल। भाषा और नामकरण की शैली पूरी तरह से बदल चुकी थी।
यहाँ ये तर्क बहुत ही मजबूत हो जाता है। अगर वेलहोसन का सिद्धांत सही होता और ये कहानियां सदियों बाद बेबीलोन के निर्वासन के दौरान गढ़ी गई होती, तो उस समय का लेखक क्या करता?
वो तो अपने समय के नाम लिखता ना।
बिल्कुल। वो निश्चित रूप से अपने समय के प्रचलित नाम और रिवाज लिखता। ये तो ऐसा है जैसे कोई आज बैठकर 1800 के दशक की पृष्ठभूमि पर एक कहानी लिखे और उसमें उस समय के एकदम सही ऐतिहासिक अपशब्दों और मुहावरों का सटीक इस्तेमाल करे, वो भी बिना इंटरनेट या किसी पुरालेख की मदद के।
ये तो लगभग असंभव है।
है? कोई ना कोई आधुनिक शब्द या स्लैंग कहानी में आ ही जाएगा।
सही कहा। और इसे ही अकादमिक भाषा में अप्रत्यक्ष साक्ष्य यानी इनडायरेक्ट कोरोबोरेशन कहते हैं।
अप्रत्यक्ष साक्ष्य।
ये सीधे तौर पर यह साबित नहीं करता कि अब्राहम नाम का व्यक्ति ठीक उसी तरह जिया जैसे लिखा है।
कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं।
बिल्कुल। लेकिन ये निश्चित रूप से साबित करता है कि वो कहानी उसी युग की है जिस युग का वो दावा करती है, क्योंकि कोई भी बाद का लेखक उन प्राचीन रिवाजों और नामों को इतनी सटीकता से नहीं गढ़ सकता था जो उस समय तक विलुप्त हो चुके थे।
एकदम सही बात है।
पुरातत्व बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये कोई टाइम मशीन या वीडियो कैमरा नहीं है जो आपको इतिहास की लाइव रिकॉर्डिंग दिखा दे। ये उस विशिष्ट युग के रीति रिवाजों, भाषा, कानूनों और माहौल को समझने का एक उपकरण है।
तो इतने सारे साक्ष्यों, सिद्धांतों और बहसों के बीच से गुजरने के बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है?
निष्कर्ष यही है कि ज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है।
हम सूचनाओं के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन नई खोजें सामने आती हैं और दशकों पुरानी जानकारियों को रातों रात बदल देती हैं।
वाकई रातों रात बदल देती हैं।
तो ये पूरा अध्ययन हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को पत्थर की लकीर या अंतिम सत्य मान लेने से बचना चाहिए। खुले दिमाग से चीजों को देखना, हर नए साक्ष्य के साथ अपनी समझ को अपडेट करना और अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाना सबसे जरूरी है।
मैं कहूंगा कि विज्ञान और इतिहास दोनों ही कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गलतियां होती हैं, जैसे एजिन गेबर की ब्लास्ट फर्नेस वाले मामले में हुई, लेकिन समय और नई तकनीकों के साथ उन्हें सुधारा भी जाता है।
बिल्कुल।
ये मानवीय जिज्ञासा और सत्य के करीब पहुंचने की निरंतर यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती।
इस सब से ना मेरे मन में एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है जिस पर वाकई सोचा जाना चाहिए।
वो क्या?
टुकड़ों को जोड़कर इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। और ऐसा करते हुए हम कई बार बड़ी गलतियां भी कर बैठते हैं ना। जरा सोचिए, आज से 4000 साल बाद के पुरातत्वविद जब हमारे समाज की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा?
शायद प्लास्टिक का कचरा, सिलिकॉन चिप्स के कुछ अवशेष और जंग खा चुके सर्वरों का मलबा।
हाँ, जरा कल्पना कीजिए कि जब वे भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारे सर्वरों से टूटे फूटे डिजिटल डेटा, अजीबोगरीब मीम्स या सोशल मीडिया के अधूरे पोस्ट खोजेंगे तो वे हमारे समाज के बारे में कैसी विचित्र और गलत धारणाएं बनाएंगे?
वो तो पक्का बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं।
क्या वे हमारे स्मार्टफोन या किसी आम गैजेट को देखकर उसे कोई जादुई धार्मिक वस्तु समझ लेंगे जिससे हम रोज सुबह उठते ही प्रार्थना करते थे?
ये बहुत मुमकिन है।
शायद 4000 साल बाद का कोई इंसान हमारे डेटा सेंटर के धुंधले एक्सरे को देखकर हमारी सभ्यता के बारे में बिल्कुल गलत डायग्नोसिस कर दे। और ये एक ऐसा विचार है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।